24 जुलाई रविवार का नमस्कार भारत फैसल मोहम्मद अली से। कश्मीर पाकिस्तान में होगा के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया नवाज शरीफ पर तीखा हमला।
पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा।
जानेंगे कितना कामयाब रहा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कश्मीर दौरा। आईएस ने ली काबुल आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी। 80 लोगों की मौत, 230 घायल। चश्मदीद ने कहा हर तरफ बस खून ही खून था, कोई मदद को नहीं आया। और इस हफ्ते के न्यूज मेकर्स में मिलवाएंगे बॉक्सर विजेंद्र सिंह से। सब आगे लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कश्मीर पर दिए गए एक बयान का कड़ा जवाब दिया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान का एक खतरनाक सपना है कि एक दिन कश्मीर उसका हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ये सपना कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गुरुवार को हुई एक रैली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हजारा समुदाय के लोगों के विरोध प्रदर्शन पर कल हुए हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस हमले में 80 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। आईएस ने कहा है कि यह हमला शिया मुस्लिम समुदाय हजारा के लोगों को निशाना बनाकर किया गया है। तुर्की में एलीट प्रेसिडेंशियल गार्ड को विघटित कर दिया गया है। इससे पहले नाकाम तख्तापलट के बाद इसके 300 सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। अमेरिका में रहने वाले धार्मिक प्रचारक फतेहुल्ला गुलेन के करीबी हेलिस हांसी को भी गिरफ्तार किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने स्वीकार किया है कि गुलेन ने तख्तापलट की साजिश रची थी। तुर्की के विदेश मंत्री मेवतू कावुसोग्लू ने कहा है कि गुलेन के प्रत्यर्पण के लिए लोगों के बयानों और दस्तावेज के आधार पर 7 से 10 दिन के अंदर अमेरिका को दिए जाने वाले डोजियर को तैयार कर लिया जाएगा। वहीं तुर्की के ईयू मंत्री ओमर सेलिक ने कहा कि गुलेन ओसामा बिन लादेन और कथित इस्लामिक स्टेट से भी ज्यादा खतरनाक है। इस चरमपंथी संगठन का मुखिया फतेहुल्ला गुलेन ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ओसामा तो हमलों की बात करता था और हमले करता था, लेकिन ये व्यक्ति सहनशीलता की बात करता है और पीछे एक चरमपंथी संगठन चलाता है। ये दाएश से भी ज्यादा खतरनाक है, तुर्की के ईयू मंत्री ओमर सेलिक के शब्द। वहीं फतेहुल्ला गुलेन इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। शुक्रवार से लापता भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान को खोजने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। विमान का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन में जहाज, विमान और पनडुब्बी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस विमान में 29 लोग सवार थे, जिनमें से 8 आम लोग भी शामिल हैं। इस विमान ने चेन्नई के ताबराम हवाई बेस से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी, जिसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गायब हो गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं फैसल मोहम्मद अली से। तमाम श्रोताओं का रविवार की सुबह बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा में स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कश्मीर से। कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जिस्म के हिस्से में चुभे कांटे की तरह है, जिसकी टीस दोनों को सालती रहती है। पाकिस्तान में कश्मीर में हुई हिंसा पर मनाए गए काला दिवस और फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयान पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल तीखा हमला बोला। नवाज शरीफ ने हाल में बयान दिया था कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा। निखिल रंजन की रिपोर्ट।
एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री हालात का जायजा लेने के लिए भारत प्रशासित कश्मीर के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर सीधा निशाना साधा। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद के जरिए कश्मीर के हालात को खराब करने का आरोप लगाया।
पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अटूट हिस्सा है। जमीन के इस स्वर्ग को पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी दुआएं कश्मीरियों के साथ हैं। मैं कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने कभी दुआएं नहीं दी, बल्कि हथियारों और आतंकवाद का गहरा दर्द दिया है।
कश्मीर में जारी तनाव की वजह हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत है, जिसके बाद हुए प्रदर्शनों में 40 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान ने वानी को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए पिछले दिनों कश्मीर के हालात पर काला दिवस भी मनाया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस बयान पर भी भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हुई कि वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये बात उन्होंने शुक्रवार को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के चुनावों में अपनी पार्टी की जीत के बाद अपने भाषण में कही।
उनकी तहरीकी आजादी को कोई रोक नहीं सकता, इंशाल्लाह वो कामयाब होकर रहेगी। और आप जानते हैं जिस तरह से वहां पर उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान इस मुद्दे को उठा चुका है। कश्मीर में कई दिनों तक अखबारों पर पाबंदी रही और कई इलाके लगातार 15 दिन से कर्फ्यू में हैं। कश्मीर में प्रदर्शनों के दौरान होने वाली मौतों के अलावा छर्रे वाली बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए भी भारतीय सुरक्षा बलों की कड़ी आलोचना हो रही है, जिनके चलते कई लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन पाकिस्तान के आरोपों का जवाब भी कल सुषमा स्वराज ने यूं दिया।
अत्यंत प्रतिकूल और खतरनाक परिस्थिति में भी हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों का संयम और अपने साथी नागरिकों के प्रति सम्मान इस बात से जाहिर है कि जम्मू और कश्मीर में पिछले दिनों की हिंसा के दौरान 1700 से भी अधिक सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए, जिनमें से बहुत से आज भी गंभीर रूप से घायल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान को लगातार संयम बरतने की सलाह दे रही है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से लगातार आने वाले बयानों से हालात सुलझते नहीं बल्कि पेचीदा होते ही दिख रहे हैं। पठानकोट हमले के बाद पटरी से उतरी दोनों पक्षों की बातचीत की कोशिशों को कश्मीर के हालात ने और मुश्किल बना दिया है।
और अभी और बात कश्मीर की। उधर कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम लगाने के नाम पर श्रीनगर गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को कश्मीरियों ने जख्म पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। जिन लोगों को भारतीय गृह मंत्री से मिलने का न्योता दिया गया था, उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया। हमारे साथी अशोक कुमार ने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से।
दो हफ्ते गुजर चुके हैं पूरे, तो कल जब वो आए तो लगता था कि बहुत प्री प्लान्ड दौरा नहीं था। यहाँ की जो राज्य सरकार है, जाहिर है बीजेपी के समर्थन वाली पीडीपी सरकार है, तो सरकार ने कई लोगों को जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे सामाजिक वर्गों से हो या राजनीतिक वर्गों से हो, सभी को निमंत्रण गया था और खास तौर से जो व्यापारी संगठन है, लेकिन सबू ने निमंत्रण को रद्द किया। जो सरकारी निगरानी वाला वक्फ है यहाँ, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उसके साथ संबंधित कुछ लोग उन्हें जरूर मिले और शिकारे वाले कुछ लोग मिले। जो एजेंडा था वो ये था कि कश्मीर और दिल्ली के बीच जो संपर्क टूटा है तो संपर्क को किस तरह से बहाल किया जाए, लेकिन उस तरफ अभी तक एक कदम भी नहीं चल पाए हैं गृह मंत्री
जी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अलगाववादी जो धड़ा है, उसका क्या कुछ कहना है राजनाथ सिंह के इस दौरे पर?
ये देखें, कल शाम को ही सईद अली गिलानी जो वरिष्ठ नेता हैं अलगाववादियों के, उन्होंने कहा कि जिन सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ पर गोलियां चलाई हैं या छर्रे चलाए हैं, जिसमें 45 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के बॉस आए हैं और वो सिर्फ उनका मोरल बूस्ट करने आए हैं, वो जख्मों पे या घावों पे मरहम लगाने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या अलगाववादियों और दिल्ली के बीच जब जब भी पीछे बातें हुई हैं तो उसके लिए ग्राउंड वर्क किया जाता है, जिसको ट्रैक टू कहते हैं। तो वो ग्राउंड वर्क चूंकि नहीं हो पाया है, अचानक से आउटबर्स्ट हो गया, कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं, तो अचानक ये आशा करना कि जो गृह मंत्री हैं वो तुरंत ही हुर्रियत वालों से बातचीत करेंगे, ये हालांकि यहाँ के कुछ समाचार पत्रों ने कल प्रकाशित किया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दूर की सोचने वाली बात है।
लोगों का जिस तरह से गुस्सा है कश्मीर में, इधर केंद्र में जो विदेश मंत्री हैं वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ जो उंगली उठाने की जो बात है, क्या वो भी कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी की वजह है कुछ वर्गों में?
लाखों लोग सड़कों पे हों, हर गली मोहल्ले में कर्फ्यू लगाना पड़े, तो आप ऐसी स्थिति को जब आप पाकिस्तान के खाते में डालेंगे तो फिर अपनी इमेज जो है उसे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये क्लेम हमेशा से रहा है कि कश्मीर अटूट अंग है, यहाँ पे जो लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन हैं वो इंटैक्ट हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं, ये भी सच है। तो इसके बाद यहाँ अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लोगों की, तो जब वो मोबिलाइज हो जाते हैं तो उसको पाकिस्तान के खाते में डालना जो है, मुझे लगता है यहाँ पे सभी वर्गों से जिनसे भी हमने बात की वो कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब बात है, इससे अपनी विदेश नीति कमजोर हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान यहाँ की मूवमेंट को सपोर्ट करता है, यहाँ जितने भी चरमपंथी सक्रिय रहे हैं पिछले 26 साल में वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से ट्रेन होके आए थे। लेकिन बुरहान वानी का जो फैक्टर है, इसके बाद से एक नया चलन चला है। बुरहान वानी खुद कभी पाकिस्तान नहीं गया था, ना ट्रेनिंग करने गया था और ना उन्होंने कभी सीमा पार की है, ये पुलिस का कहना है। तो एक नया फैक्टर है, इस नए फैक्टर में लोगों के गुस्से को ठंडा करने के बजाय यहाँ की स्थिति को पाकिस्तान के खाते में डालना, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुस्सा बढ़ता है।
ये थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसूर श्रीनगर से।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
और अब रुख काबुल की तरफ, जहां कल यानी शनिवार को हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन ने ली है। आईएस का कहना है कि दो हमलावरों ने हजारा समुदाय के प्रदर्शन के लिए जमा हुई भीड़ में अपना आत्मघाती बेल्ट डेटोनेट कर दिया। हमले में 80 लोगों की मौत हो गई है जबकि 230 घायल हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रही हैं हरिता कांडपाल।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में 80 लोगों की मौत हो गई और 230 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके जिस जगह पर हुए वहां हजारा समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट से जुड़ी अमाक न्यूज एजेंसी ने कहा है कि दो लड़ाकों ने काबुल में शिया समुदाय की भीड़ में विस्फोटकों के बेल्ट से धमाका किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की। आज मैं दुखी हूं, पीड़ितों और शहीदों के परिवार वालों के दुख में मैं उनके साथ खड़ा हूं। अफगानिस्तान के आप प्रतिनिधि होने के नाते मैं रविवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान करता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान ने इस हमले की निंदा की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने मीडिया को भेजे गए एक ईमेल में कहा कि तालिबान का इस हमले के पीछे कोई हाथ नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक धमाका देह मजांग चौक पर हुआ। वहां हजारा समुदाय के हजारों लोग प्रस्तावित बिजली सप्लाई लाइन का रास्ता बदलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घायलों को काबुल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में एक चश्मदीद सबीरा जान ने हमले के वक्त का हाल बीबीसी को बताया। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जब मैंने धमाका सुना तब सब लोग वहां भागने लगे और चिल्लाने लगे। मैंने देखा कि कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग खून से सने हुए थे, कोई भी लोगों की मदद के लिए मौजूद नहीं था। पुलिसकर्मी हमें देख रहे थे, फिर मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी, फिर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। सबीरा जान के शब्द। हजारा समुदाय अफगानिस्तान की जनसंख्या का करीब एक तिहाई हिस्सा है और ज्यादातर लोग शिया मुसलमान हैं। ये समुदाय हेलमंड और अफगानिस्तान के मध्य इलाकों में रहते हैं। हजारा समुदाय के लोग इस बात से नाराज हैं कि तुर्कमेनिस्तान से काबुल आने वाली बिजली आपूर्ति लाइन बामियान और वारदाक प्रांत से नहीं गुजरेगी। यहाँ हजारा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। हजारा समुदाय के लोग 1990 के दशक में तालिबान के शासन में शोषण और भेदभाव की शिकायत करते रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान की ओर पलायन कर गए हैं।
काबुल में आत्मघाती हमले की रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। हाल तक अफगानिस्तान से तालिबान के हमलों की खबरें आती थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस्लामिक स्टेट की सक्रियता धीरे धीरे मुल्क में बढ़ती दिख रही है। वात्सल्य राय ने बात की काबुल में बीबीसी पश्तो सेवा के संवाददाता सईद अनवर से और पूछा कि आईएस अफगानिस्तान के लिए बड़ा खतरा है या तालिबान।
गुज़श्ता एक साल के ज्यादा अरसा हुआ कि आईएस मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में एक्टिव हो चुके हैं, खासकर अफगानिस्तान के मशरकी प्रांत नंगरहार के 3-4 जिलों में। और गुज़श्ता 3 महीने से अफगान हुकूमत ने बड़ी शदीद ऑपरेशन शुरू की है आईएस के खिलाफ। नंगरहार प्रांत में आए दिन 10-15 तक इंसर्जेंट्स मारे जाते हैं और उन्होंने भी अफगान हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। आपको मालूम है कि आईएस मिलिटेंट्स शिया कम्युनिटी के ज्यादातर खिलाफ हैं, तो आज की जो गैदरिंग थी उन्होंने क्लेम किया कि इस गैदरिंग को, इस प्रोटेस्ट को उन्होंने टारगेट किया है।
जी, हजारा समुदाय एक दौर में तालिबान के निशाने पर हुआ करता था, लेकिन तालिबान ने काबुल के हमले की निंदा की है और इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो फिलहाल अफगानिस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या इस्लामिक स्टेट से निपटना ही है?
अभी तक अफगान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मुश्किल तालिबान ही है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के तकरीबन 20 से ज्यादा सूबों में एक्टिव है और अफगान हुकूमत के साथ 1-8 जिलों में हर सूबे में लड़ाई में मशरूफ है। और आईएस मिलिटेंट्स सिर्फ 1 या 2 सूबों में एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी अफगान हुकूमत के साथ भी वो लड़ रहे हैं और तालिबान के साथ भी लड़ रहे हैं, और अब शिया कम्युनिटी को भी उन्होंने टारगेट किया। तो बज़ाहिर ये एक थ्रेट है अफगान हुकूमत के लिए।
सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ये लगातार जो हमले होते हैं इसका आम लोगों की मानसिकता पर कैसा असर है?
असर तो बिल्कुल हो सकता है, जब एक ही हमले में एक दिन में एक ही इलाके में 80 लोग मारे जाते हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, इसकी असर तो है। लेकिन फिर भी अफगानों का कहना ये है कि इस हालत का मुकाबला करेंगे। धमाके के 15 मिनट बाद प्रोटेस्टर्स दोबारा वहाँ जमा हुए और वहाँ रात गुजार रहे हैं, और मशरकी प्रांत नंगरहार में आप देख रहे हैं कि एक तरफ से आईएस मिलिटेंट लोगों को गली गांव से निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही आम लोग बंदूक लेके अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के सफों में आकर आईएस के साथ मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। पहले कहा जाता था कि इस गर्मियों के मौसम में तालिबान कम से कम 5-6 सूबों पर कब्जा करेंगे और हालात बहुत खराब होंगे। इन तमाम बातों के बावजूद तालिबान किसी सूबे पर कब्जा न कर सका। लड़ाई मुख्तलिफ सूबों में है, लेकिन हालात उतने खराब नहीं हुए।
अफगानिस्तान में हालात उतने खराब नहीं हुए और अभी भी तालिबान एक बड़ा खतरा है, आईएस उतना बड़ा नहीं। काबुल से बीबीसी पश्तो के संवाददाता सईद अनवर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
उन्हें क्रिकेट पसंद है, वो कहते हैं कि वो जबरदस्त लेग ब्रेक बॉलिंग किया करते थे और किसी भी मैच में 50 से कम रन बनाते थे। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ उन्हें बेहद पसंद है, लेकिन कहते हैं कि अगर वो नुसरत फ़तेह अली खान बन गए तो उनकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। मिलिए पाकिस्तानी गायक राहत फ़तेह अली खान से, जो बॉलीवुड की फिल्मों में भी आजकल अपनी दिलकश आवाज़ दे रहे हैं।
एक मेरा 2014 में एक एल्बम हमने लॉन्च किया था, ज़रूरी था, उसमें एक सॉन्ग है, उस एल्बम का नाम तो बैक टू लव है, बट उसमें गाना एक है ज़रूरी था, वो इट्स क्रॉस 100 मिलियन।
100 मिलियन
जी। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी
मैं अगर ये पूछूं कि استاد راحت فتح علی خان کو تو سب سنتے ہیں, راحت فتح علی خان کس کو سنتے ہیں؟ آپ کے گیت گائکی قوالیاں لوگ پسند کرتے ہیں, ایسا کوئی ہے یا ایسی کوئی ہے جس کو آپ سنتے ہوں, جس کے لیے آپ گاتے ہوں, آپ پسند کرتے ہوں؟
میں مدھا ہوں فیمیل گائکی میں میڈم جی نور جہاں کا اور میڈم لتا جی کا, اور میں جس کے لیے گاتا ہوں جو لڑکی ہے وہ میری وائف ہے اور میری بیٹی ہے. یہ تو ہوگی فیمیل. اور میل میں میرا بیٹا جس کے لیے میں گاتا ہوں اور پسند کرتا ہوں, استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو, اپنے دادا کو, ان کو سنا ہے اور ورلڈ میوزک سنا ہے. یہ میرے ایک آگے بڑھنے کے لیے, آگے جانے کے لیے, کچھ نیا سوچنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو ورلڈ میوزک سن رہا ہوں.
اچھا, ذاتی زندگی میں استاد راحت فتح علی خان کو کیا پسند ہے؟
میں پسند کرتا ہوں کلاسیکل گائکی, سولو کلاسیکل گائکی, اور اس کے بعد قوالی اور کلاسیکل, اور یہ دونوں ہی میں نے کم گائے ہیں.
تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, محبت کی راہ ہو میرا کر تم.
کھیلوں میں دلچسپی ہے؟
جی ہاں, میں کرکٹ بچپن سے کھیلتا ہوں.
کھیلتے آئے ہیں؟
جی ہاں.
بالر یا بیٹسمین؟
دونوں, تینوں. فیلڈر بھی اچھا, کیچ بھی کوئی نہیں چھوڑا, اور لیگ بریک بھی غضبناک کی ہوئی ہے.
کرکٹ پسند؟
یس سر. اور 50 کے قریب ہر میچ میں رنز بنا لیتا تھا, 50 سے کم نہیں.
زندگی کی ایسی کوئی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی, ایسی کوئی منزل جو استاد راحت فتح علی خان پانا چاہیں گے وہ ابھی تک نہیں آئی؟
استاد نصرت علی خان صاحب بننا ہے زندگی میں مرنے سے پہلے, اگر وہ پوری ہو جائے تو میں بس سفل ہو گیا.
راحت فتح علی خان سے بات کی تھی لندن میں بی بی سی اردو سیوا کے شفیع نقی جامع نے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اخبار کیا کہہ رہے ہیں. کیا اخباروں میں بھی کابل ہی چھایا ہوا ہے؟
جی فیصل, آج کے اخباروں میں کابل میں دھماکہ, اور کابل میں بھارتی ایک جیوڈت ڈی سوزا راحت کرمی ہیں, وہ اگوا ہو گئی تھیں پچھلے مہینے, وہ لوٹ آئی ہیں, ان کی خبریں. اور سشما سوراج کا پاکستان کا جواب, یہ سب بڑی سرخیاں ہیں. اس کے علاوہ جن خبروں پر میری نظر پڑ رہی ہے, ہندوستان ٹائمز کی مکھیہ خبر ہے کہ بھارت نے 3 چینی پترکاروں کو نکال دیا ہے, ان کا ویزا بڑھانے سے انکار کر دیا گیا. ان پر کہا گیا کہ انہوں نے انوچت پترکارتا کی, اس لیے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اور یہ چین کی آدھیکارک سماچار ایجنسی شنوا کے 3 پترکار ہیں, یہ دلی میں اور ممبئی میں کام کر رہے تھے, اور انہیں 31 جولائی تک واپس جانے کا آدیش دیا گیا ہے. اس کے علاوہ انڈین ایکسپریس نے ایک بڑی دلچسپ خبر چھاپی ہے, دوردرشن کے پاس بھارتی کرکٹ اتہاس کے سنہرے پلوں کا فوٹیج نہیں ہے. یہ خبر جڑی ہے آسٹریلیا میں ٹائی ہوئے ٹیسٹ میچ, جو کافی مہتوپورن کرکٹ کے اتہاس میں مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھارتیہ بلے باز سنیل گاوسکر کا, جو انہوں نے 10,000 رن پورے کیے تھے 1987 میں احمد آباد میں پاکستان کے خلاف, اور جی اور ایک مہتوپورن ورلڈ کپ جو انگلینڈ کے باہر پہلی بار کھیلا گیا, اس کا فوٹیج نہیں ہے. انڈین ایکسپریس اخبار نے سوچنا کے ادھیکار کے تحت اس فوٹیج کو مانگا تھا, لیکن دوردرشن نے کہا کہ نہیں ہے. غورطلب اس میں یہ ہے کہ دوردرشن اس دور میں اکیلا ہی ٹی وی چینل تھا, اور دوسرے
سارے میچز ہوئے
جی اس وقت نیجی چینلز نہیں ہوا کرتے تھے, اور اس دوران دوردرشن کا دبدبا تھا. اور لیکن دکھ کی بات ہے کہ یہ سنہرے پل ان کا فوٹیج.
ایسی کچھ خبر کچھ دنوں پہلے آئی تھی کہ جو محمد علی جناح تھے انہوں نے جو اسپیچ دی تھی وہ پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے.
اور ایک خبر ڈاکٹر ذاکر نائک سے جڑی, جو کافی وادوں میں چل رہے ہیں آج کل. ٹائمس آف انڈیا نے لکھا ہے کہ ان کے آئی آر ایف سنسان سے جڑے ایک ویکتی کو کلیان سے گرفتار کیا گیا, اور اس کے علاوہ 2 دن پہلے بھی ایک ویکتی کو گرفتار کیا گیا تھا جو ان کے لیے کام کرتا تھا, اور یہ ان سے چرمپنتھی سنگھٹن اسلامک اسٹیٹ سے جڑے ہونے کے آروپ ہیں ان پر.
بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کے لیے ہریتا. اب آج کے اس ہفتے کے نیوز میکرز بیجنگ اولمپک کے کانسے پدک وجیتا بھارت کے جانے مانے مکے باز وجیندر سنگھ نے چند دنوں پہلے ہی ایشیا پیسیفک پیشیور مکے بازی خطاب اپنے نام کیا ہے. انہوں نے آسٹریلیا کے پورو یوروپی چیمپئن کیری ہوپ کو 10 راؤنڈ کے مقابلے میں انکوں کے آدھار پر ہرایا. ہمارے آج کے نیوز میکرز وجیندر سنگھ ہیں, ان سے بات کی ہمارے ساتھی آدیش کمار گپت نے, جس کے دوران وجیندر نے اپنی خطابی جیت اپنے پرشنسکوں کو سمرپت کی.
یہ خطاب ان سب فینس کے لیے جو میرے لیے پیار کرتے, جو میرے کو دعائیں کرتے میرے لیے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
آپ نے بیجنگ اولمپک میں کانسے پدک بھی جیتا ہے اور اب یہ مقابلہ جس طرح سے 10 راؤنڈ کے بعد آپ نے جیتا, آپ نے دکھا دیا کہ اگر کھلاڑی میں حوصلہ ہو اور پوری تیاری ہو تو جیتا جا سکتا ہے.
جی بالکل جیتا جا سکتا, آپ نے آپ کو اسٹرانگ مانی ہے, آپ نے آپ کو سب سے بہتر مانی ہے, تو آپ کی جیت پکی ہے.
یہ آپ کا 7واں ایسا مقابلہ تھا جو لگاتار آپ نے جیتا. کیری ہوپ جو کہ پورو یوروپین چیمپئن بھی تھے, کس طرح کی الگ سے ہٹ کے تیاری کی؟ کیا واقعی آپ پر اس بار دباؤ تھا؟
جی میں اپنے ملک میں کھیل رہا تھا اور لیکن ٹھیک ہے, ایکسپیرینس باکسر تھا, اسی فائٹ کی 10 راؤنڈ تک فائٹ چلی اور مزہ آیا جیت کے.
اور اس بار تو یہ مقابلہ بالکل وی آئی پی بن گیا تھا کیونکہ ایک سے ایک نیتا یہاں پر شامل تھے. یوراج سنگھ موجود تھے, ویریندر سہواگ موجود تھے,
لوگ اسپیشلی بالی ووڈ سے یا کرکٹ سے آئے تھے, یا سب کا بہت بہت شکریہ جو اسپیشلی فائٹ دیکھنے آئے تھے. بہت سارے فینس آئے تھے میرے باکسنگ ورلڈ کے, انہوں نے فائٹ دیکھی, انجوائے کیا. اور اس کے بعد میں اب سب سے فون پہ بہت پوچھتا ہوں کہ سر فائٹ کیسی لگی, تو ایوری بڈی ویری اپریشیٹ کی ہاں بہت اچھی فائٹ تھی, بہت مزہ آیا دیکھ کے.
ویسے فائٹ تو واقعی بہت دمدار تھی, لیکن یہ 10 راؤنڈ کا مقابلہ آپ کے لیے کتنا وشیش تھا؟
جی مشکل تھی, بہت ساری چوٹ تھی لگی بھی اس فائٹ میں بھی, لوگ سوچتے تھے کہ بہت جلد نو کاؤٹ ہو جائے گی فائٹ, میں بھی ایسا ہی سوچ ہی جاتا, لیکن جب فرسٹ راؤنڈ میں نے دیکھ لیا کہ اوکے لمبا جائے گا میچ, اور ویسے ہی کیا جو میرے کوچ نے میرے کو ایڈوائز کیا میں نے ویسے ہی فائٹ کی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے.
ویسے وجیندر آپ کے اس پروفیشنل مقابلے کو جتنی کامیابی ملی, لوگوں نے دیر رات تک پورا مقابلہ دیکھا, کیا اس طرح کی کامیابی کی امید تھی؟
جی امید میں بس یہی کہتا کہ نیا تھا, ایک نیا شو تھا, پہلے ہم سوچ رہے بہت بڑے لیول پہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں کریں, لیکن اس کے بعد ہم نے سوچا کہ تیاگراج میں کرتے ہیں, بیکاز ایک نئی چیز ہے, کئی لوگ پسند کرتے کہ کرتے ہیں, لیکن جو رسپانس ملا ہمارے کو وہ بہت بہترین تھا.
اب آپ کی رینکنگ بھی سدھر گئی ہے, 15ویں رینکنگ ہے, تو اب کس طرح کے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے؟
جی انٹرسٹنگ اور مزیدار ہوں گے جو بھی میچ ہوں گے, آپ بس تھوڑا سا ویٹ کیجیے, بہت جلد اناؤنس کروں گا کہ کب فائٹ کروں گا, کس کے ساتھ فائٹ کروں گا.
ویسے آپ کا یہ نیا راستہ کتنا مشکل تھا؟
بھائی آسان کچھ نہیں ہوتا لائف میں, اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, تبھی وہ مقام حاصل ہوتا ہے, چاہے آپ کسی ایکٹر کو, کرکٹر کو, کسی کو لیجیے, بہت محنت کرتے ہیں, بہت ٹریننگ کرتے ہیں, تب وہ اس لیول تک پہنچتے ہیں.
یہ اولمپکس میں بھارتیہ مکے باز بھاگ لے رہے ہیں, ان سے کتنی امید آپ کرتے ہیں؟
امید اچھا کریں گے میں مانتا ہوں, بیکاز جنہوں نے بڑے مشکل دور سے نکل کے کوالیفائی کیا ہے اور ایکسپیرینس ہے سب لڑکوں کے ساتھ, بس میں یہ کہوں گا کہ جو بھی جائیں میڈل کے ساتھ واپس آئیں.
فیڈریشن کے جھگڑوں سے جو نقصان ہوا, کیا آپ کو امید ہے کہ بھوشیہ میں اب اس اور زیادہ دھیان دیا جائے گا؟
جی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, بس ہمارے پاس صرف کمی ہے تو اچھے فیڈریشن کی, اچھے سسٹم کی جو اس کھیل کو بنائے رکھے. ہم سب لوگوں کو آئی تھنک بی سی سی آئی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے, بیکاز جو انہوں نے گیم کو لے کے آئے ہیں جتنے بڑے لیول پہ, اور لوگ کیوں کرکٹر بننا چاہتے ہیں, بیکاز بی سی سی آئی نے اس کو ایسا بنایا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی کوئی ہمارے پاس بھی آئے جو اس کو ویل مینج کرے باکسنگ کو, پرو باکسنگ کو, اور تبھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے کسی اسپورٹس کا.
وجیندر جی آپ نے جو نیا راستہ دکھایا, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے ادھک سے ادھک یوا کھلاڑی بھی اب پروفیشنل باکسنگ کی طرف آکرشت ہوں گے اور ایک نئی دنیا ہمیں دیکھنے کو ملے گی مکے بازی کی؟
آئی ہوپ کہ جو نئی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بہت اچھا ہوا ہے یہ سب چیزیں.
جی وجیندر جی آپ نے بی بی سی سے خاص بات چیت کی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.
وجیندر سنگھ سے بات کی تھی آدیش کمار گپت نے. اور انت میں ایک بار پھر سے سنتے ہیں بی بی سی سماچار.
बीबीसी समाचार। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कश्मीर पर दिए गए बयान के जवाब में कहा, पाकिस्तान का एक खतरनाक सपना है कि एक दिन कश्मीर उसका हिस्सा बन जाएगा, लेकिन यह सपना कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हजारा समुदाय के लोगों के विरोध प्रदर्शन पर कल हुए हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली। इस हमले में 80 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे देवाशीष कुमार। सुनवाएंगे ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती बीबीसी हिंदी की दूसरा कार्यक्रम। तब तक के लिए दें इजाजत। नमस्कार।